Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिष्यत्सुधर्मा स्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखा के केनोपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं। चार खंडात्मक इस उपनिषद के दो खंडों में ब्रह्म के निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन हुआ। ब्रह्म का सगुण सोपाधिक स्वरूप जो उपास्य है उसे तृतीय खंड से श्रुति ने बताना प्रारंभ किया। ब्रह्म के सगुण उपास्य स्वरूप का निरूपण करने के लिए एक आख्यायिका श्रुति ने अपनाई और आख्यायिका के अनुसार कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में देवता पक्ष को संकल्प मात्र से ही सगुण ब्रह्म ने विजय दिलाई, असुरों का संकल्प मात्र से ही पराजय करा दिया। देवताओं को जिसके संकल्प से विजय मिली उसे देवता भूल जाते हैं और देवताओं के कल्याण में बाधक जो अभिमान है देवताओं के अंदर आ जाता है और वो अभिमान परमात्मा को सहन नहीं होता। भगवान पृथ्वी आदि जैसे पूरे विश्व को अपने में धारण करके स्थित है लेकिन भक्त का अभिमान भगवान सहन नहीं कर पाते। तो देवताओं का जो भगवान को देवताओं का जो अभिमान है भगवान देख रहे हैं देवताओं के कल्याण में बाधक उसे। इसलिए वे उस अभिमान को दूर करने के लिए, जो अभिमान देवताओं का कल्याण तो कर नहीं सकता अपितु अनेक प्रकार की आपत्तियां देवताओं के सामने ला सकता है, उस अभिमान को दूर करने के उद्देश्य से ही एक तेजस्वी रूप धारण करके भगवान देवताओं के आंख से दिख सके इतनी दूरी पर, देवताओं से उतनी दूरी पर प्रकट हो जाता है। और वहां पर देवताओं ने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी यक्ष यानी पूजनीय वस्तु हमारे सामने है, और उस पुरुष का, तेजस्वी पुरुष का विशेष परिचय प्राप्त करने के लिए प्रथम अग्नि को, दूसरे बार वायु को, अग्नि के असफल होने पर नियुक्त करते हैं देवता। लेकिन कथा में बताया गया कि अग्नि तथा वायु ये दोनों भी उस तेजस्वी यक्ष के विशेष स्वरूप का परिचय तो प्राप्त नहीं कर पाए, उनके अभिमान को दूर करने के लिए यक्ष ने अग्नि के सामने जिस तिनके को जलाने के लिए रखा था, अग्नि उसे भी जला नहीं पाया। सारे विश्व को भस्म करने की शक्ति जिस अग्नि में है, वह अग्नि ईश्वर के संकल्प से ही एक सूखे हुए तृण को भी नहीं जला पाया। तो जिसका संकल्प समस्त विश्व को जलाने की शक्ति जिस अग्नि में है, उस अग्नि में सूखे तिनके को जलाने की शक्ति भी नहीं रख पाता, वह सत्य संकल्प परमेश्वर है। और वायु भी उस सूखे तिनके को उड़ा नहीं पाया, और दोनों असफल होकर के जब वापस जाते हैं तो इंद्र को देवता प्रार्थना करते हैं यक्ष के विशेष स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए, और इंद्र आते भी हैं। लेकिन इंद्र के आते ही यक्ष अंतर्धान हो जाता है, लेकिन इंद्र यक्ष के विशेष स्वरूप विषय को जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आया है, तो जानकारी प्राप्त किए बिना वापस अपने लोक में जाना इंद्र को उचित नहीं लग रहा है, तो वहीं पर स्थित रहते हैं जहां पर इंद्र आने पर यक्ष अंतर्धान हुए थे। वहीं पर यक्ष का ध्यान करते हुए इंद्र उपस्थित है, खड़े हैं, और जब यक्ष के स्वरूप विषय को जिज्ञासा उत्कट हो गई तो बताया गया कि विद्या ने ही, यानी जिससे ब्रह्म का बोध प्राप्त हो सकता है, ऐसी ब्रह्म ज्ञान की शक्ति ही यहां पर एक शोभमान स्त्री के रूप में बताई है, और वह शक्ति एक प्रकार से साकार रूप धारण करके इंद्र के सामने आती है। इंद्र उस शक्ति के पास में जाकर के अपनी ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट करते हैं, और इंद्र की ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए शक्ति ने साकार रूप धारण की हुई विद्या का सामर्थ्य जिसमें है, ऐसी विद्या ने ही इंद्र को ब्रह्म का उपदेश किया। ये बताया कि वह यक्ष तो ब्रह्म था जिसके संकल्प से आप लोगों ने देवासुर संग्राम में इन असुरों को पराजित किया, विजय प्राप्त की, वही ब्रह्म आप लोगों के अभिमान को दूर करने के लिए अत्यंत तेजस्वी यक्ष का रूप धारण करके प्रकट हुआ था। वह ब्रह्म सबकी आत्मा है, ब्रह्म है। इस प्रकार विद्या के वाक्य से इंद्र को ब्रह्म का आत्मरूप से बोध हुआ और इंद्र ने जाकर के फिर अग्नि और वायु को भी बता दिया कि वह यक्ष तो हम सब लोगों की प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है। तो प्रथम सब देवताओं में सबसे पहले इन तीन देवताओं ने जाना और इन तीन देवताओं में भी विद्या के मुख से इंद्र ने ब्रह्म का प्रथम ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी कारण इन देवताओं में बाकी देवताओं की अपेक्षा उत्कृष्टता है, श्रेष्ठता है। इसे दूसरे और तीसरे मंत्र में चौथे खंड के बता दिया गया था। इंद्र, अग्नि और वायु इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि उन्हें देव योनि उपलब्ध है, लेकिन श्रुति ने इनकी श्रेष्ठता का हेतु बताया, ब्रह्मज्ञान इनको जिस कारण से हुआ है का अर्थ है कि ब्रह्म विद्या श्रेष्ठता का प्रयोजक है। जिस किसी भी योनि में ब्रह्मबोध हो जाए वो ब्रह्मबोध श्रेष्ठ है, ब्रह्मबोध के कारण श्रेष्ठता है, न कि देव योनि की उपलब्धि होने के कारण। तो इस प्रकार एक प्रकार से ब्रह्म विद्या भी मनुष्य योनि से भी उत्कृष्ट जो देव योनि है उसमें भी और उत्कर्ष लाने वाली है, श्रेष्ठता की निमित्त है, इसलिए ब्रह्म विद्या प्रशस्ता है। ऐसी ब्रह्म विद्या की स्तुति भी एक प्रकार से इस आख्यायिका के माध्यम से संपन्न हुई। अब ये जो उपास्य ब्रह्म है, उस उपास्य ब्रह्म की उपासना का विधान करने के लिए जो परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप का आत्मरूप से ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है, उनके लिए श्रुति परमात्मा के सगुण स्वरूप का चिंतन करने के लिए बताती है। सगुण स्वरूप के चिंतन का ही नाम है उपासना। उपासना शब्द का अर्थ होता है उपास्य के गुणों का चिंतन, गुण चिंतनम उपासनम, ऐसा विद्वानों ने उपासना का अर्थ किया है। किसी की उपासना करनी है का अर्थ है उसके गुण का चिंतन करना है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसमें भी उपासक के हित के लिए शास्त्र निर्गुण के भी उपाधि को लेकर के गुण बताता है, स्वतः उसमें कोई गुण न होने पर भी उपाधि को लेकर के उसमें गुण आ जाते हैं। और उपाधि दो प्रकार की है, एक अधिदैव उपाधि है, दूसरी अध्यात्म उपाधि है। ये जो इंद्र, अग्नि, वायु आदि देवता हैं, ये हैं अधिदैव। इंद्र है आपके हस्त इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता, तो अग्नि है वाग इंद्रिय की देवता, वायु है प्राण की देवता। तो इस प्रकार ये अध्यात्म देवता है, अधिदेव देवता हो गए। और इन अधिदेव जो अग्नियादि है इनको निमित्त बना करके ब्रह्म में उपासना के लिए जो गुण बताया जाता है उसे कहा जाता है अधिदैव गुण। तो चतुर्थ खंड के चौथे मंत्र में अधिदैव गुण को बताया है। पहले कहा कि तस्य एष आदेश, तस्य यानी जिसके संकल्प मात्र से इंद्रादि देवताओं को देवासुर संग्राम में विजय उपलब्ध हुई, जिसके संकल्प से असुरों का पराजय हुआ और देवताओं के अभिमान को दूर करने के लिए देवताओं के सामने अत्यंत तेजस्वी यक्ष रूप धारण करके जो प्रकट हुआ था उसे तस्य इस शब्द से लेना, वो है सगुण परमात्मा। और उस सोपाधिक परमात्मा का यह आदेश है। आदेश शब्द का अर्थ है उस सोपाधिक परमात्मा के उपासना का उपदेश है। श्रुति उस सगुण साकार परमात्मा के उपदेश को बता रही है, उपासना बता रही है। उपासना का तो अर्थ बता दिया कि उपासना का अर्थ था गुण चिंतन। तो सगुण परमात्मा की उपासना करनी है का अर्थ है परमात्मा के गुणों का चिंतन करना है। तो कौन से गुणों का चिंतन करना है, तो दो गुण बताए गए यहां पर। एक तो ये अत्यंत तेजस्वी है, देवताओं को निमित्त बना करके ब्रह्म के उपासना के लिए अत्यंत तेजस्वित्व गुण को बताया गया। इसे समझाने के लिए चौथे मंत्र में कहा गया कि यद एतद विद्युतो व्यद्युतत आ। इसमें आ शब्द का अर्थ है यथा, यानी सदृश, उपमार्थ में आ शब्द है, मतलब उदाहरण देने के लिए, उपमा देने के लिए। तो उपमा किसकी, तो जैसे लोक में बिजली घने अंधकार का भी विदारण करके, अंधकार को चीर करके चमकती है और ऐसी एक क्षण में ही चमक जाती है अचानक ही, और सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश उसका व्याप्त होता है। ये तो उदाहरण हुआ। उस विद्युत के विद्योतन के तरह ही ये जो ब्रह्म है देवताओं के सामने प्रकट हुआ, देवताओं के अंदर सर्वत्र व्याप्त परमात्म विषयक अज्ञान रूपी जो अंधकार था, उस अंधकार का विदारण करते हुए ब्रह्म अत्यंत तेजस्वी यक्ष रूप धारण करके उसी बिजली की तरह प्रकट हुआ। जैसे बिजली चमकती है ऐसे प्रकट हुआ, इसलिए ये हुआ एक प्रकार से यहां पर अत्यंत तेजस्वित्व गुण इंद्रादि देवताओं को निमित्त बना करके चिंतन के लिए परमात्मा में बताया गया। इंद्रादि देवताओं के सामने प्रकट हुआ ब्रह्म कैसा है, तो अत्यंत तेजस्वी है। किस प्रकार का तेज है, तो कहते जैसे बिजली का विद्योतन होता है, तेज होता है, ऐसे अत्यंत तेजस्वी रूप से वो प्रकट हुआ, अर्थात तेजस्वी है। ये एक अधिदैव गुण बताया अत्यंत तेजस्वित्व, और दूसरा एक गुण बताया कि वह निमिमिषत है। निमेश कहा जाता है चक्षु के गिरने को, पलकों का गिरना और पर के खुलना बंद होना, आंख का बंद होना निमेश है। और आंख का खुलना उन्मेष है। तो जैसे निमेष उन्मेष ये बहुत जल्दी होता है, पता भी नहीं चलता निमेष हुआ, और निमेष उन्मेष करने के लिए आपको कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, बिना परिश्रम के और बहुत जल्दी ही निमेष होता है, उन्मेष होता है। ऐसे ये जो देवताओं के सामने अत्यंत तेजस्वी रूप से प्रकट हुआ ब्रह्म है, यह ब्रह्म जब इस संसार को बनाता है, संसार की स्थिति करता है, संसार का प्रलय करता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है, ये जो कार्य है ब्रह्म के, इन कार्यों को करने के लिए ब्रह्म को कितना प्रयास करना पड़ता होगा। एक मकान बनाना हो तो आपको कितना प्रयास करना पड़ता है, अलग अलग कार्य को संपन्न करने वाले अलग अलग मिस्त्रियों से मिलना, उनको लाना, कच्चा माल ला करके देना, अनेक प्रयासों से संपन्न होता है, बनता है एक छोटा सा मकान। रोज का भोजन भी बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, गैस का चूल्हा जलाना आदि, आटा लगाना आदि। तो कोई भी कार्य हमसे संपन्न नहीं होता बिना प्रयास के। तो इतना बड़ा संसार है, इस संसार को परमेश्वर ने बनाया है, तो इस संसार को बनाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा होगा ब्रह्म को, ईश्वर को। लेकिन कहते हैं कि कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ये यहां पर बताया जा रहा है। जैसे आपको निमेष और उन्मेष करने के लिए पता भी नहीं चलता कि कब उन्मेष हुआ, कब निमेष हुआ, आपकी पलके कब गिरी और कब फिर उठी, आंख कब खुली, आप आंख कब बंद हुई, ये आपके बिना प्रयास के ही हो रहे हैं कार्य आपके द्वारा। जैसे श्वासोश्वास बिना प्रयास का ही चल रहा है, ऐसे ही परमात्मा को जैसे निमेष उन्मेष बिना प्रयास के और जल्दी जल्दी ही होता है, शीघ्र होता है, ऐसे ब्रह्म को संसार को बनाने के लिए बहुत अधिक समय की भी आवश्यकता नहीं होती और बहुत बड़े प्रयास की भी जरूरत नहीं होती। निमेष उन्मेष के तरह ब्रह्म जगत उत्पत्ति आदि अपने कार्यों को शीघ्र ही और बिना प्रयास के ही संपन्न करता है। इसलिए अनायास शीघ्र कारित्व, शीघ्र कार्यकारित्व, ये एक गुण चतुर्थ मंत्र के नियमिमिषत आ इस वाक्य के द्वारा बताया गया उपासना के लिए। और ये दोनों गुण तो जैसे ये देवताओं को निमित्त बना करके ब्रह्म में बताए गए हैं। इंद्र के पास में आते ही जैसे इंद्र यक्ष का पता लगाने के लिए आए, तो जैसे निमेष होता है यानी तुरंत आपकी पलके बंद होती है, ऐसे ही इंद्र के आते ही वह यक्ष अंतर्धान हुआ, उसके लिए कोई समय नहीं लगा छिपने के लिए और प्रकट होने के लिए भी कोई समय नहीं होगा। यक्ष रूप धारण करके इंद्रादि देवताओं के सामने प्रकट होना और इंद्र के सामने आते ही छिप जाना, ये निमेष उन्मेष के तरह यक्ष रूपधारी ईश्वर के द्वारा हुआ। इसलिए ये निकला कि ईश्वर शीघ्र कार्यकारी है। और अनायास बिना प्रयास के कार्य करता है। तो ये दो गुण ब्रह्म के चिंतन के लिए ब्रह्म में बताए गए उपासना के लिए, एक अत्यंत तेजस्वित्व और दूसरा अनायास शीघ्र कार्य कारित्व। इन ब्रह्म के दो गुणों का चिंतन माना जाता है कि ब्रह्म की अधिदैव उपासना हो रही है। ब्रह्म की उपासना के लिए ही अध्यात्म उपाधि को लेकर के गुण बताए गए ब्रह्म में, वो है पांचवें मंत्र में, अथ अध्यात्मम। अथ शब्द का अर्थ है अधिदैव उपाधिक गुण का उपदेश होने के बाद ब्रह्म के आध्यात्मिक उपाधि को लेकर के गुण का वर्णन हो रहा है। अध्यात्म उपाधि है मन, ब्रह्म की मनो उपाधिक ब्रह्म है। और ये जो ब्रह्म हृदय में है, ईश्वर स्वरो भूतानाम वृद्धि सर्गुण तिष्ठति के अनुसार अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूताशय स्थित, भगवान गीता में कह रहे हैं कि हृदय ये भगवान का स्थान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, ऐसे दो तीन श्लोकों में भगवान ने ये बताया कि सर्वनियंता परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के अंतःपाती अलग अलग 17 तत्वों के गोलक इसी स्थूल शरीर में विद्यमान है। सूक्ष्म शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर तो है 17 तत्वों का समूह। 17 तत्व हैं 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेन्द्रिया, 5 प्राण, मन बुद्धि। तो ज्ञानेन्द्रियों के गोलक अलग अलग, आंख के गोलक ये हैं, नाक के ये हैं, शरीर के अलग अलग जो अंग दिख रहे हैं ये सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो अलग अलग उपकरण हैं उनके गोलक हैं, आश्रय स्थान है। उन गोलकों में स्थित होकर के ही इंद्रिया अपना अपना जो कार्य है वो कर सकती है। जब स्थूल शरीर रूपी